Jai Radha Madhava Kunja Bihari.
यह प्रवचन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 152 पर नई दिल्ली में 30 अगस्त 1997 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाधारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम की बजाय हम चैतन्य चरितामृत के एक या दो श्लोक आज पढ़ेंगे। ये पहला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है रूपा गोस्वामी जी को और मध्य लीला की 19वें अध्याय का है श्लोक नंबर 152। माली हना करे से बीजा रोपना श्रावण कीर्तना जले कराए से जना। ओम ज्ञान्त मिरांदास्या ज्ञानांजना शलक्या चक्षुरन मिलितान येना तस्माय श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेस्तम स्थापितान येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्राजतं सहागना रघुनाथन्मितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्ण कृष्ण इस अध्याय में जैसे हम कह रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। इस रूप गोस्वामी ने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। राजा की इच्छा नहीं थी कि वो अपनी नौकरी त्यागें, रूप गोस्वामी ने त्याग दी। और जब उन्होंने त्याग पत्र दिया नौकरी त्यागी उनके पास धन तो बहुत था। 10,000 सोने के सिक्के थे, 10,000। कोई रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी गरीब नहीं थे। 10,000 सोने के सिक्के के अलावा 10,000 दो नाव उनको लेनी पड़ी जिसमें अपनी संपत्ति को नाव में रखकर वो ले गए थे। फिर उन्होंने आधी संपत्ति बांट दी ब्राह्मणों को और वैष्णवों को, 25% और बात दिया रिश्तेदारों को, बाकी 25% रखा अपने लिए क्योंकि उन्हें पता था कि भविष्य में ये राजा उनको कष्ट देगा। और फिर ये संपत्ति का उपयोग किया किसने? सनातन गोस्वामी ने जेल से निकलने के लिए, क्योंकि जब सनातन गोस्वामी को जेल में रखा था तो उन्हें ये रिश्वत देनी पड़ी जेल जेल कीपर को जेल से भागने के लिए। तो रूप गोस्वामी जी आकर मिले चैतन्य महाप्रभु जी को, कहा प्रयाग में। प्रयाग में 10 दिनों के लिए चैतन्य महाप्रभु जी ने चैतन्य रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। और ये जो भक्ति रसमृत सिंधु ग्रंथ है, जो जिसकी रचना रूप गोस्वामी जी ने की है, ये आधारित है चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के ऊपर, जो कि उन्होंने रूप गोस्वामी जी को दिया था प्रयाग में। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले तो कहा, ब्रह्मंद ब्रह्मीद कोनो भगवान हो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अनेक 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 योनियों में गुजरने के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके हृदय में ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, जैसे कई बार पहाड़ की छोटी से कोई लकड़ी का टुकड़ा नीचे आ रहा होता है पानी के प्रभाव से, और आते आते कई बार किसी पत्थर के कोने में वो रुक जाता है। तो जब भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए तो उसके बाद क्या करना चाहिए, वो उपदेश रूप गोस्वामी जी हमें यहाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को भक्ति बीज प्राप्त हो जाता है तो उसे चाहिए कि वो माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोए। जब भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए वो तो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि गीता में भी भगवान कहते हैं, भवनाम जन्मनाम अंते ज्ञानम हम प्रपदयन्ते, वासुदेव सर्वामिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्म मृत्यु के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे भक्ति का बीज प्राप्त होता है। फिर भक्ति के बीज को पानी पिलाना पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाए उसे चाहिए कि वो माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोए। तो अगर हम माली बनकर इस बीज को नहीं बोएंगे तो फिर ये भक्ति का बीज उगेगा नहीं। इसलिए इस विषय पर बल दिया जाता है कि ये अगर हम चाहते हैं कि भक्ति का जो बीज है ये अंकुरित हो तो फिर ये बीज को पानी पिलाना पड़ेगा। पानी पिलाए बिना ये बीज उगेगा नहीं। पानी पिलाने का क्या अर्थ है? पानी पिलाने का अर्थ है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भक्तों के संग में रहकर श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस विषय को समझाते हैं, कहते हैं भक्तों के संग में रहकर श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाना। श्रवणम कीर्तनम के साथ प्रभुपाद जी ने ये भी जोड़ा है, ठाकुर जी की सेवा करना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि वह हरिदास ठाकुर की नकल कर सकता है तो इस कार्य में वो सफल नहीं होगा। हरिदास ठाकुर जी तो तुलसी के पौधे सामने बैठकर जाप करते थे, पर प्रभुपाद जी ने हमें यह श्रवणम कीर्तनम में ठाकुर जी की सेवा का जो माध्यम है वो भी साथ में जोड़ा हुआ है। तो जो जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा ली वो तो ठाकुर की सेवा करते हैं, आरती करके भगवान के लिए भोजन बना के भगवान का श्रृंगार करके, पर सारे भक्त ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं? उनकी आरतियों में उपस्थित होकर। जब हम भगवान की मंगल आरती में आते हैं, भगवान की आरतियों में आते हैं, तो वो भी एक रूप से हम भगवान की मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये जो माध्यम, ये गुरु महान आचार्यों ने माध्यम दिया है, तो श्रवणम कीर्तनम ये भक्ति के बीज को पानी पिलाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम सब ये सुन बैठे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि आप सुन रहे हो, ये तो आप हजारों बार सुन बैठे हो। दीक्षा लेने से पहले भी हम सुन बैठते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि हम इसके महत्व को नहीं समझते। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं गुरु प्रसाद, कि गुरु जो है वो दया दयालु इस दृष्टि से है कि वो ये शिक्षा देता है शिष्य को। क्या शिक्षा? शिक्षा जिसके द्वारा भक्त शिष्य इस श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो केवल भक्ति के बीज को प्राप्त करना ही काफी नहीं है, पर इसको पानी भी पिलाना चाहिए, नहीं तो ये जो भक्ति का जो बीज है ये अंकुरित नहीं होगा। और ये श्रवणम कीर्तनम का जो माध्यम है, श्रवणम कीर्तनम का अर्थ यही नहीं कि हम हरि नाम ले, और इसका ये भी अर्थ है कि हम कृष्ण कथा में भी साथ में रुचि ले। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कृष्ण कथा कृष्ण के नामों में ही रुचि लेनी चाहिए, तो ही हमारा जो भक्ति का जो बीज है ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो इस मार्ग में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इस श्लोक मैंने इसलिए आज चुना है क्योंकि ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, ये श्रवणम कीर्तनम में रुचि लेना। रूप गोस्वामी, अगर हम श्रवणम कीर्तनम में रुचि नहीं लेंगे तो फिर किन कार्यों में रुचि लेंगे? अत्याहारा प्रायश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संघर्ष लोलियम चा सद्वीर भक्तिर विनश्यति का अर्थ क्या है? नष्ट हो जाना। श्रवणम कीर्तन में रुचि नहीं लोगे तो दूसरे कार्यों में रुचि लोगे, प्रज्वलपा में। और इन कार्यों के द्वारा जो भक्ति का बीज है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये श्रवणम कीर्तनम बहुत महत्वपूर्ण है। अभी श्रवणम कीर्तनम के साथ हमें वैष्णव अपराधों से भी बचना चाहिए, इसलिए मैं एक और श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ।
यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाने वक छिन्ने तारे सुखी न्याय पाता।
इन श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि किस प्रकार भक्ति के बीज को पानी पिलाने से ये जो भक्ति का बीज है उगता है और अंत में गोलोक वृंदावन में जाकर भगवान के चरणों में शरण लेता है। पर ये सब उपदेश देने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव अपराध के द्वारा ये जो भक्ति का लाभ है वो हाथ से फिसल जाता है। कहा गया है कि अगर हम वैष्णव भक्ति करते हुए वैष्णव अपराध करें तो जिस प्रकार एक पागल हाथी सुंदर बगीचे को नष्ट कर देता है, उस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। तो हम सबको वैष्णव व्यवहार में वैष्णव अपराध से डरना चाहिए। वैष्णव अपराध का अर्थ क्या है? ये नहीं कि केवल गुरु अपराध से डरो, एक दूसरे के व्यवहार से भी बहुत सावधानी से व्यवहार रखना चाहिए। जो भी भक्त जो भी वैष्णव हो उसको आदर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें कहा है दिनादपि सुनी चेना तरोरपि साइश नामानी न मना देना कितना दी सदा हरे। बिल्कुल निमृत भाव से भक्ति करो। अगर हम एक दूसरे को आदर देंगे फिर, और अगर हम एक दूसरे के गुणों को देखेंगे फिर हम देखेंगे कि वैष्णव का जो संबंध है वो बहुत मीठा रहेगा। वैष्णव अपराध से तो हमें बचना जरूर चाहिए। जब दुर्वासा मुनि ने अपराध किया अम्बरीश महाराज पर, दुर्वासा मुनि को भगवान के सुदर्शन चक्र से बचने के लिए उन्हें दौड़ना पड़ा। अंत में वो जब भगवान के पास आए तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे भक्त बहुत प्रिय हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ और वो मेरे हृदय में निवास करते हैं। तो वैष्णव अपराध से हमें जरूर बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से आप कैसे बचोगे? अहंकार के कारण हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और हम किसी और को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, खास करके संस्था में जहाँ की अनेक भक्त इकट्ठे रह रहे हैं, कि हमें एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए, कमियों को नहीं। अगर हम एक दूसरे की कमियों को देखेंगे तो हम हमेशा ये सोचेंगे क्या कि हम दूसरों से ज्यादा अच्छे हैं। और जब आप ये सोचते रहोगे कि आप दूसरों से ज्यादा अच्छे हो तो आपके मन में फिर अहंकार आ जाएगा, और उस अहंकार के कारण फिर भक्ति के मार्ग में कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी। तो हम सबको यही सोचना चाहिए कि मैं सबसे पतित हूं। नरोत्तम दास ठाकुर की अगर आप रचनाओं को पढ़ो तो आप देखोगे कि लगभग हर रचना में नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे से ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। कहते हैं कि नहीं, मोह समाप के पतित पवान है तो तब अवतारा, मोह समाप पतित प्रभु ना पाए प्यारा। आप आए हो पतितों के उद्धार के लिए, पर मेरे से ज्यादा पतित कोई है ही नहीं। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो उसके सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। अगर कोई मेरा नाम भी ले लेगा तो सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। तो अब हम भक्तों को ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे अपनाएं अपने व्यवहार में, हम वैष्णव संबंध को ज्यादा मीठा कैसे बनाएं। इसलिए मैंने ये दो श्लोक आज चुने हैं, क्योंकि ये अवश्य है कि मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए भक्तों का वैष्णव संघ बहुत मीठा हो। सबसे पहले तो इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए ये अवश्य है कि हम श्रवणम कीर्तनम के महत्व को समझें। जब तक हम श्रवणम कीर्तनम के महत्व को नहीं समझेंगे, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बहुत व्यक्ति बना रहे हैं। एक वो क्या वो इलाका है, वो छतरपुर, हाँ छतरपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, सुना कि सब वहाँ जाते हैं दर्शन लेने के लिए, ठीक है ना। वहाँ सुंदर मंदिर है, अच्छी बात है, पर वहां से श्रवणम कीर्तनम पर बल नहीं दिया जाता। तो लोग प्रभावित होंगे हम सबके श्रवणम कीर्तनम के द्वारा, ठीक है ना। और श्रवणम कीर्तनम का समय क्या, कौन सा समय है? सुबह का समय। मंगल आरती से हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। आज मुझे टेम्पल कमांडर ने कहा कि मंगल आरती के वक्त 15-17 भक्त आश्रम में विश्राम कर रहे थे, 15 या 17 भक्त। तो अगर 15 या 17 भक्त मंगल आरती में नहीं आएंगे, भगवान की सेवा नहीं कर, जब आप मंगल आरती में आते हो अब भगवान की सेवा भी करते हो, क्योंकि पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा है कि श्रवणम कीर्तनम का अर्थ क्या है, श्रवणम कीर्तनम और ठाकुर जी की सेवा करना। तो ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं उनके उनका गुणगान करके, उनके सामने प्रणाम करके, उनके सामने नाच के, उनके सामने ताड़ी मार के, तो वो श्रवणम कीर्तनम। फिर जैसे हमने कहा है, हम सबकी इच्छा है कि मंदिर में ही इस वातावरण में ही सब सुबह जाप करें, क्योंकि इसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो इसके द्वारा भक्ति जो है, भक्ति का बीज जो है वो उगेगा और अंत में जाकर गोलोक वृंदावन में शरण लेने की संभावना है। पर भक्ति के मार्ग में अड़चन भी आ सकती है अगर हम सावधानी से भक्ति के मार्ग में नहीं चलेंगे। प्रभुपाद जी तो बहुत ही सरल उदाहरण एक देते थे, क्या कि आप दाढ़ी बनाते वक्त अगर सावधानी से दाढ़ी नहीं बनाओगे तो कट जाएगा मुंह। तो केवल भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने से यह अवश्य नहीं है कि आप भगवान के धाम लौट जाओगे। भक्ति के मार्ग में चलते हुए जो अनेक नियम हैं जो दोष हैं, अपराध हैं, उनसे भी हमें बचना चाहिए। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर हम देखें कि कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, त्याग प्रकट कर रहा है, तो ये देखकर हमें खुश होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे हृदय में दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या हो। फिर हमें एक दूसरे को आदर देना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए। एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप सब एक दूसरे को जब सुबह मिलो, एक दूसरे को प्रणाम करो, एक दूसरे को धन्यवाद करो। ये नहीं कि केवल सन्यासी जी को, सन्यासी जी को तो करना चाहिए, ये तो शास्त्रों का कहना है, पर आप एक दूसरे को भी प्रणाम करो। आप एक दूसरे के गुणों को देखो, और जब एक दूसरे को पुकारो तो नाम के साथ प्रभु शब्द को जोड़ो। ये बहुत सरल बातें हैं। आप इन बातों को लाखों बार सुन बैठे हो, पर अफसोस की बात है कि लाखों बार सुन लिया है पर जब भी हम इनका उपयोग नहीं कर पाते। प्रभु का क्या अर्थ? मास्टर, मालिक, हमारे स्वामी। तो हम किसको स्वामी स्वीकार करना नहीं चाहते अहंकार के कारण। हम सोचते हैं हमें प्रभु बनना चाहिए सबका, हमारा दूसरा प्रभु क्यों बना। तो प्रयास करना पड़ेगा। तो एक दूसरे को प्रभु बुलाना चाहिए, एक दूसरे को प्रणाम करो, एक दूसरे के गुणों को देखो, और अगर कमियों को देखो तो आंख बंद कर लेना चाहिए? नहीं। अगर कमियों को देखो तो निम्रत विचार से वो आप सुना सकते हो। ये नहीं कह रहे हम कि हम अगर किसी की कमियों को देखो तो आंख बंद कर लो, नहीं, गलत नहीं समझना। पर अगर आप एक दूसरे के गुणों को देखोगे फिर आपकी भक्ति भी, आप दूसरों को खुद ही खुद आदर दोगे। आप देखो ये भक्त कितने सालों से सेवा कर रहा है, ठीक है, सेवा तो कर रहा है, तो थोड़ा तो गुण है, कम से कम थोड़े सालों, इतने सालों से सेवा कर रहा है। और हमें भी अपने आचरण के द्वारा बड़ा सुंदर व्यवहार प्रकट करना चाहिए। और वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा से डरना चाहिए। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वैष्णव अपराध करके भी मैं बच जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अमोघा से क्या कहा? अमोघा सर्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का पति था, दामाद था। सर्वभौम भट्टाचार्य एक समय उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान है। उनके दामाद अमोघा ने यह स्वीकार नहीं किया। अमोघा भगवत चैतन्य महाप्रभु जी की निंदा करता था। जब चैतन्य महाप्रभु जी खाना खा रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य के घर में, तो एक दिन अंदर आकर अमोघा ने देख लिया। अक्सर जब चैतन्य महाप्रभु जी खाना खाते थे अमोघा के घर में, तो सर्वभौम भट्टाचार्य डंडा लेकर खड़े रहते थे द्वार पर कि अमोघा अंदर नहीं आ जाए उनके खाते समय। पर एक दिन उनको अपनी पत्नी का सहयोग देना पड़ा और अमोघा ने अंदर आकर देखा। हाँ, 15-20 सब्जियां, दाल वगैरह चैतन्य महाप्रभु जी के टेबल में पड़ी हुई थी। सर्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बनाती थी बहुत, पर चैतन्य महाप्रभु जी खाते थे बिल्कुल थोड़ा। तो अमोघा ने कहा, देखो किस प्रकार का सन्यासी है। तो अमोघा को बहुत गहरी बीमारी हो गई कॉलरा की, मरने वाले थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी गए उनके पास और अपना हाथ रखा उनके हृदय में और उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या रहेगी भगवान वहां नहीं रहेंगे। जैसे आपको गंदे कमरे में रहना अच्छा लगता है, आपके कमरे के आगे कोई कचरा फेंक दे तो आप वहां सोना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो इसी प्रकार ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। पर ईर्ष्या को आप कैसे निकालोगे? इन सब अनर्थ से बचने के लिए एक ही उपाय है, और शरणम कीर्तन के अलावा भक्तों के सुंदर व्यवहार रखने के लिए एक दूसरे के गुणों को देखो, एक दूसरे को आदर दो, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ। हम सबको एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी हम भक्तों का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करते थे, उत्साह बढ़ाने का ये अर्थ नहीं, कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो भी हम कुछ बोले नहीं। एक साथ ठाकुर सेवा करते हैं आरतियों में उपस्थित होकर, फिर एक साथ और क्या करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं। प्रसाद का भी प्रयास करना चाहिए कि हम एक साथ प्रयास करें, ये नहीं कि हम अलग समय खाएंगे वो अलग समय। कई बार कभी कभी इमरजेंसी में मजबूरन वो अलग बात है, पर वैसे प्रयास करना चाहिए कि प्रसाद, प्रसाद क्या है, भोजन जो भगवान को अर्पण किया हो वो भी अगर हम प्रसाद भी खाएं एक साथ। तो इस प्रकार भक्तों में भक्त में यूनिटी बढ़ेगी। एक गुरु ने प्रॉपर जी उदाहरण देते थे, आप लकड़ी के एक टुकड़े को लो और किसी को दो, आप आसानी से तोड़ सकते हो, पर अगर लकड़ी के छड़ियां, अगर आप लकड़ी के छड़ियों को लेकर धागे से बांध दो और किसी को बोलो तोड़ने को, तोड़ सकेगा, नहीं तोड़ सकेगा। तो इसीलिए हम सबको अगर हम वैष्णव व्यवहार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा सुंदर बनाएंगे, वैष्णव संबंध बढ़ाने का प्रयास करेंगे, फिर ये एकता जो है वो बढ़ेगी। फिर आप एक दूसरों का उत्साह बढ़ाओगे और एक दूसरे के उत्साह बढ़ाने से ये देखोगे कि सब भगवान के धाम लौटने की योजना बना रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने अमोघा से कहा, ईर्ष्या हृदय से निकालो। एक और भक्त कथा है चैतन्य चरितमृत में, एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी श्रीनिवास आचार्य के प्रति। तो एक दिन उन्होंने श्रीनिवास के घर के सामने ये सामान रख दिया, शराब वगैरह, ये दिखाने के लिए कि ये दुर्गा का उपासक है और भगवान कृष्ण का नहीं। इस भक्त को अगले दिन सुबह जब श्रीनिवास जी ने अपना दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि अपने दरवाजे के आगे क्या था, दुर्गा की सेवा का सब सामान, शराब की बोतल वगैरह। तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, देखो मैं दुर्गा का उपासक हूं, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। खैर थोड़ी देर बाद जिस ब्राह्मण ने यह किया था उसको बहुत गहरी बीमारी हो गई, लेप्रसी, कोढ़ की। वो गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास ये कहने के लिए कि मुझे माफ कर दो, पर चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे माफ नहीं किया। वो तड़फते गए, फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें भेजा श्रीनिवास के पास। फिर उनकी जो बीमारी है ईर्ष्या, इन सब से बचना चाहिए, और इन सब से आप बचोगे अगर आप अपने हृदय में समझो कि आप सबसे पतित हो, आप सबसे निकम्मे हो। अगर आपको कह दे आप निकम्मे हो तो आप क्या महसूस करते हो, अपमान है ना। पर आपको मन में ये सोचना चाहिए कि मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मेरे में भक्त एक बूंद भक्ति का प्रेम नहीं है, और वैष्णव के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, साधुओं के आशीर्वाद से ये भक्ति में मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप सब भक्तों से ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंदिर के भक्त एक दूसरे के गुणों को देखें, एक दूसरे को प्रणाम करें रोज, और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें, और किसी के प्रति ईर्ष्या वगैरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सोचो सचमुच कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और निमृत विचार से अगर आप सेवा करने का प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि इसके द्वारा आपकी भक्ति भी आगे बढ़ेगी और दूसरों की भक्ति भी, और जो मंदिर का वातावरण है वो ज्यादा सुंदर बनेगा, और फिर सुंदर मंदिर, सुंदर वातावरण लोगों को प्रभावित कर सकेगा। जैसे कि एक समय मैंने प्रभुपाद जी को एक नई पुस्तक दिखाई थी छापकर, तो प्रभुपाद ने वो पुस्तक को देखकर कहा, आर बुक्स आर क्वालिटी इनसाइड क्वालिटी आउटसाइड। मतलब ये था प्रभुपाद जी का कहना कि हमारे ग्रंथों की जो छपाई है ये भी ऊंची क्वालिटी की है, और जो अंदर मैटर है वो भी बहुत ऊंची क्वालिटी का है। तो उसी प्रकार हमें यहाँ मंदिर तो भगवान की दया से, प्रभुपाद की दया से सुंदर बहुत बन रहा है, साथ में भक्तों को भी बहुत सुंदर बनना है, और जब भक्त भी सुंदर होंगे मंदिर भी सुंदर होगा तो उसका क्या परिणाम होगा, वैकुंठ धाम, प्रभुपाद जी ने बॉम्बे मंदिर में कहा था हेवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग। प्रभुपाद जी कहते थे ये जो मंदिर है ये बॉम्बे दिल्ली लंदन न्यूयॉर्क में नहीं है, पर ये वैकुंठ धाम में है। तो वैकुंठ धाम का वातावरण बनाना पड़ेगा, और ये वातावरण बनाने के लिए कोई बाहर के आदमियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। किस चीज की आवश्यकता है? आचरण, शुद्ध साधना और श्रवणम कीर्तनम की, फिर ही आप अपने जीवन को सुधारोगे और पूरे वातावरण को सुधारोगे। नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शायद उस दिन मैंने आपको कथा सुनाई थी भक्ति, शायद यहाँ सुनाई थी या बॉम्बे में, भक्ति सिद्धांत जी ने वो कथा सुनाई थी कि एक शादी की बारात नदी के पार जाना था। सारी रात नाव चला रहे थे पर नाव हिली नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि लंगर लगा हुआ था। तो जब तक हमारा लंगर लगे रहेगा ये भक्ति की नाव आगे नहीं चलेगी। और अब ज्यादा समय नहीं बचा, आप ये उपदेश बहुत बार सुन बैठे हो पर अब तो बहुत कम समय बच गया है। तो हमें जल्दी से ये जो भौतिक लंगर है इसको उठाना है और इस शिक्षा का पालन करना है भक्ति के आनंद को महसूस करने के लिए, और बिल्कुल वैकुंठ धाम का वातावरण यहाँ स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण।